ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। देश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन में मरने वालों की तादाद पहुंची 141 अब तक लापता। प्रधानमंत्री शेख बहादुर देवा ने सुदूर पश्चिम के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलगत निरीक्षण। प्रभावितों का तत्काल उद्धार और सुरक्षित स्थानों में व्यवस्थापन करने का स्थानीय तहों और सुरक्षा निकायों को प्रधानमंत्री देवा ने दिया निर्देश। 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन मार्ग शीर्ष 10 गते से 12 गते तक चितवन में करने का नेकपा एमाले स्थायी कमेटी बैठक ने किया निर्णय। बागमती प्रदेश में मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य के ऊपर विश्वास का प्रस्ताव पेश। इसी कार्तिक 10 गते को होगा मतदान। और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर भड़के अमेरिका और यूरोपीय देश। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण प्रतिबंधों को लागू करने की बताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने सुदूर पश्चिम प्रदेश के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को आज अवलोकन किया है। बीते रविवार से लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन से हुई भौतिक और मानवीय क्षति का अनुगमन करने के लिए प्रधानमंत्री देवा आज सुदूर पश्चिम प्रदेश पहुंचे थे। अनुगमन के क्रम में डोटी जिले के राजपुर स्थित नेपाली सेना के बैरक पहुंचे प्रधानमंत्री देवा ने स्थानीय प्रशासन व अन्य सुरक्षा निकायों को तत्काल सुदूर पश्चिम प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों का उद्धार और राहत करने का निर्देश दिया। भ्रमण में सहभागी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों तक तत्काल ही राहत कार्यक्रम ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने आज ही बाझांग जिला पहुंचकर बाढ़ व भूस्खलन से हुई क्षति के विषय में जानकारी ली। इसी तरह प्रधानमंत्री देवा ने बाढ़ प्रभावित बैतड़ी की सिगास गांव पालिका वार्ड नंबर 5 डुगाड़ पहुंचकर स्थलगत जानकारी हासिल की, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने आज ही गृह जिला डडेलधुरा पहुंचकर वहां की स्थिति के विषय में जायजा लिया। इसी तरह आज ही उन्होंने बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित कंचनपुर का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा कल काठमांडू वापस लौटेंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने लगातार की बारिश के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ व भूस्खलन में हुई जनधन की क्षति के प्रति दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों में संवेदना प्रकट की। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में ये बात उल्लेख है। उन्होंने आपदा से प्रभावित हुए लोगों का उद्धार, घायलों का इलाज और लापता लोगों की तलाश में जुटने का संबंध निकायों को निर्देश भी दिया। कंचनपुर की भीमदत्त नगरपालिका ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की टोली का परिचालन किया है। बता दें कि भीमदत्त नगर आपदा व्यवस्थापन समिति की कल हुई बैठक ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की टोली भेजने का निर्णय किया था। कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ व भूस्खलन की चपेट में 101 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश नंबर 1 में 60, बागमती प्रदेश में 1, कर्नाली प्रदेश में 7, लुम्बिनी प्रदेश में 2 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 31 समेत आज दोपहर तक में देश में 101 लोगों की हुई मौत की जानकारी नेपाल पुलिस ने दी। बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के विभिन्न स्थानों में 1177 परिवार विस्थापित हुए हैं, जबकि 49 घरों, 8 तबेलों, 6 पुलों और 3 सरकारी कार्यालयों में क्षति पहुंचने के साथ ही 139 चौपाए मारे गए। नेकपा एमाले स्थायी कमेटी बैठक ने 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में करने का निर्णय किया है। ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठान में आज हुई बैठक ने ऐसा निर्णय किया। महाधिवेशन के लिए एमाले स्थायी कमेटी के सदस्य राम बहादुर थापा बादल के नेतृत्व में 21 सदस्यों की व्यवस्थापन कमेटी समेत गठन करने का बैठक ने निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप ग्यवाली ने दी। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य इसी कार्तिक 10 गते को विश्वास का मत लेने की तैयारी में हैं। प्रदेश सभा की आज की बैठक में प्रदेश सभा मुख्य सानू कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि इसी कार्तिक 10 गते बुधवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के विश्वास के मत के लिए मतदान होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शाक्य के विश्वास का मत देने का आग्रह करने पर कांग्रेस माओवादी लगायत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कहा था कि मुख्यमंत्री शाक्य को विश्वास का मत प्राप्त होने की स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें चाहिए कि किसी और के लिए मार्ग प्रशस्त करें। इसी बीच विपक्षी गठबंधन ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर नेकपा एकीकृत समाजवादी के राजेंद्र प्रसाद पांडे का नाम प्रस्ताव किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र ने पार्टी के 33 केन्द्रीय विभागों और एक प्रतिष्ठान को पूर्णता दी है। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस डाड़ा में हुई स्थायी कमेटी की बैठक ने अधिकतम 35 सदस्य होने के हिसाब से विभागों का गठन किया। नेपाल में आज कोरोना के 545 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 726 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, वहीं 8 मरीजों का मौत हो गई। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 11,315 है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। विद्युतीय माध्यम से मछली मारने के दौरान आज परसागढ़ी में एक युवक की मौत हो गई। मरने वालों में परसागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 28 वर्षीय प्रेम बहादुर श्रेष्ठ हैं, ये जानकारी पुलिस ने दी। इसी कार्तिक 7 और 8 गते को देश भर के बच्चों को विटामिन ए और कीड़े की दवा निःशुल्क खिलाया जाएगा। 6 महीनों से लेकर 5 साल से नीचे के करीब 27 लाख बच्चों को विटामिन ए और कीड़े की दवा निःशुल्क खिलाया जाएगा, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। सप्तरी की राजबिराज नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। अपने ही घर के छत पर रहे होर्डिंग बोर्ड हटाने के दौरान करंट लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों का इलाज गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में हो रहा है, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका व कई यूरोपीय देशों ने आज उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की प्रौद्योगिकी में प्रगति यह रेखांकित करती है कि उसके परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम तथा आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण प्रतिबंधों को तत्काल लागू करने की जरूरत है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया से उसके उकसावे पर रोक लगाने की अपील की, जो सुरक्षा परिषद प्रतिबंध प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उत्तर कोरिया को बिना किसी पूर्व शर्त कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ के 3 सदस्य आयरलैंड, फ्रांस व एस्टोनिया के एक अलग बयान में कहा कि पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की खबरें उत्तर कोरिया के हालिया उकसावे का ही हिस्सा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन में मरने वालों की तादाद पहुंची 141 अब तक लापता। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने सुदूर पश्चिम के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलगत निरीक्षण। प्रभावितों का तत्काल उद्धार और सुरक्षित स्थानों में व्यवस्थापन करने का स्थानीय तहों और सुरक्षा निकायों को प्रधानमंत्री देवा ने दिया निर्देश। 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन मार्ग शीर्ष 10 गते से 12 गते तक चितवन में करने का नेकपा एमाले स्थायी कमेटी बैठक ने किया निर्णय, बागमती प्रदेश में मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य के ऊपर विश्वास का प्रस्ताव पेश, इसी कार्तिक 10 गते को होगा मतदान और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर भड़के अमेरिका और यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण प्रतिबंधों का लागू करने की बताई जरूरत। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुआ। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।